जय गुरु ज्ञान एस्टरिस्क द 31st of July के प्रवचन का पार्ट 2 ज्योतिष का प्रभाव भी दिख रहा है, तो जो होना है वो होकर रहता है। यह भी सामने है, इन सबको देखते हुए सत्पुरुषार्थ की जरूरत है। भाग्य को बदलना है तो मानव सेवा, जीवद्या, प्रभु भक्ति, माता पिता का आशीर्वाद लेना सीख जाइए। एक धर्मनिष्ठ भर सेठ थे, वो समय समय पर दान पुण्य करते थे। उनका एक इकलौता पुत्र था जो बहुत ही गुणी एवं रूपवंत था। एक बार सेठ के घर पर एक ज्योतिषी आया। ज्योतिषी की सेठ से बहुत सी बातें हुई। बातों ही बातों में सेठ ने सहज भाव से अपने पुत्र का भविष्य पूछा। ज्योतिषी ने कहा, सेठ जी, आपका पुत्र दान पुण्य बुद्धि गुण आदि में आपसे बढ़कर होगा। पर इतना कहकर ज्योतिषी रुक गए। पर सेठ ने कहा, आप रुक क्यों गए, का क्या मतलब? ज्योतिषी ने कहा, कुछ नहीं। ऐसे ही सेठ ने कहा, कुछ तो बात जरूर है, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। ज्योतिषी ने कहा, हाँ सेठ जी, बात ऐसी ही है, आपको बताऊंगा तो आपको व सेठानी दोनों को दुहक होगा, अतः भविष्य की बात को अभी रहने ही दें। सेठ ने कहा, ज्योतिषी जी, बात कैसी भी हो आप मुझे बताइए। अब ज्योतिषी ने कहा, सेठ जी, आपके पुत्र का जिस दिन विवाह होगा उसी प्रथम रात्रि को उसकी भयंकर घात है, उस घात से जीवित रहना कठिन है। यह सुनकर सेठ का हृदय घबरा गया। सेठ ने पूछा, कोई तो उपाय होगा? ज्योतिषी ने कहा, घात तो अवश्य है, आयुष्य अगर बलवान हो तो शायद बच भी जाए, अतः आप अपने धर्म का सहारा लो। समय व्यतीत हुआ और लड़का 20 वर्ष का हो गया। दान आदि के कारण सेठ की बहुत ख्याति थी, जिससे दूर दूर से पुत्र के लिए अच्छे अच्छे घर की लड़कियों का रिश्ता आने लगा। रिश्तों को आते देख सेठ ने सोचा, क्या करूं मैं, यदि ज्योतिषी की बात सच हो तो उस लड़की का क्या होगा, आते ही प्रथम रात्रि को ही विधवा हो जाएगी, उसके सारे सपने ढह जाएंगे, उसका तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, और ज्योतिषी की बात झूठी निकले तो मेरे पुत्र के लिए क्या करूं? समय पर शादी नहीं हुई तो बेटा कुंवारा रह जाएगा। अंत में सेठ ने निर्णय किया कि किसी धर्मनिष्ठ लड़की से पुत्र की शादी करूं, धर्म के प्रताप से अच्छा हो जाए और कदाचित पाप का उदय हो और दुहक आए तो वह धर्मी होने से दुहक में हिम्मत रखेगी। अब सेठ जी लड़की का चुनाव रूप रंग धन संपत्ति से नहीं, धार्मिक गुण की दृष्टि से करने लगे। पितु जहाँ जाते धर्म से संबंधित अनेक प्रश्न पूछते। धर्म किसे कहते हैं, धर्म से क्या लाभ है, परमोदे से दुहक आए तब क्या करना चाहिए, दुहक में और सुख में किस प्रकार जीना चाहिए, सामायिक प्रतिक्रमण आता है क्या, आदि कई बातें पूछते। सेठ ने बहुत सी लड़कियां देखी, पर धर्म की दृष्टि से उन्हें कोई नहीं भाई। बहुत खोज करने पर अंत में एक धर्मिष्ठ सेठ का घर पसंद आया। उस घर के सभी लोग जिन धर्म पर अटूट श्रद्धा रखने वाले थे, सभी सामायिक प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, व्रत नियमों का पालन करने वाले थे। जिन धर्म सभी के रोम रोम में बसा था, उस घर में सेठ की कुंवारी एक कन्या थी जो अत्यंत सुंदर, संस्कारी और धर्म की जानकार थी। सेठ ने उस कन्या से अपने पुत्र की सगाई कर दी। सेठ ने अपने बंगले के सामने एक नया बंगला इस सावधानी के साथ बनवाया कि कोई भी जीव जंतु उसमें प्रवेश ना कर सके। फिर धूमधाम से पुत्र का विवाह किया। वर वधु घर आए। माता पिता ज्योतिषी की भविष्यवाणी से चिंतित थे कि प्रथम रात्रि में ही बेटे का भयंकर घात कहा हुआ है, न जाने आज की रात को क्या हो। सेठ ने ज्योतिषी को अपने यहाँ बुलाया। ज्योतिषी अपनी बात पर अटल था कि आपके पुत्र का घात अवश्य है। सेठ ने कहा, आज मेरा पुत्र विवाह करके आया है, अतः आप भी यहीं रुक जाएं। खूब सजाए गए उस नए बंगले में नवपरिणित वर वधु को रात्रि विश्राम हेतु भेजा। वो कन्या इतनी धर्मनिष्ठ थी कि हर महीने की 13, 14 पूनम इन 3 दिनों का उपवास करती, अर्थात हर महीने में 1 तेला करती थी। उसकी शादी पूनम के दिन हुई। पूनम होने से उसकी शादी के दिन तीसरा उपवास था। तेले तप के साथ नई दुल्हन ने नए बंगले में प्रवेश किया। पति पत्नी आनंद से बातें करते हुए सो गए। तेला तप होने से लड़की ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था, लड़के ने भी उसका साथ दिया। प्रथम रात्रि होते हुए भी दोनों का ब्रह्मचर्य सुरक्षित था। मध्य रात्रि के समय बंगले के बाहर एक स्त्री और पुरुष करुण स्वर में रुदन कर रहे थे। उस रुदन स्वर से पुत्रवधु की नींद खुल गई। उठकर उसने खिड़की से नीचे झांक कर देखा कि एक युगल है। पत्नी बेहाल दशा में पड़ी हुई है और पति उसे आश्वासन दे रहा है। नई दुल्हन बहुत दयालु थी, वो फटाफट नीचे आई। नीचे आकर देखा कि औरत को वहीं प्रसूति हो गई है, इसलिए उसका पति बहुत घबरा गया है कि न घर है, न अन्न, न वस्त्र। ऐसी स्थिति में पत्नी और बच्चे को लेकर कहां जाऊं? अतः वह रो रहा था। दुल्हन ने पूछा, तुम कौन हो, कहां के रहने वाले हो? उस भाई ने कहा, हम पास के गांव में रहते हैं, यहां कुछ काम से आए थे। समय पर जाने का कोई साधन नहीं मिला, अतः हम यहीं रह गए। यह मेरी पत्नी है, इसके समय से पहले ही यहाँ बच्चा हो गया, इसलिए हम रो रहे हैं। दुल्हन तुरंत घर में आई और पानी लाकर औरत की अशुचि स्वच्छ की। अपने साथ दहेज में जो कपड़े लाई थी उसमें से कपड़े लाकर उसे पहनाए तथा मिठाई आदि जो खाने को था उसे दिया। अपनी रेशमी रजाई उसे ओढ़ने को दी तथा पास में जो पैसे थे वो भी दे दिए। उन दोनों पति पत्नी को इससे बहुत शांति मिली और उनके मुख से आशीर्वाद के स्वर निकल पड़े कि तुमने सच्चे दिल से हमें दुहक में सहायता की है, तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे, तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे। इस तरह बार बार उस दुल्हन को दिल से दुआ देते रहे। दुल्हन ने कहा, बहन, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया और ना ही कुछ किया, एक मानव के रूप में मैंने अपना कर्तव्य ही निभाया है। आप लोग यहाँ आराम कीजिए, मगर आपके रहने की अच्छी व्यवस्था हो और आपके जाने की इच्छा हो तो यह सब लेकर जाए, और यदि कोई व्यवस्था ना हो तो मैं आपको रख लूंगी। धर उस दुल्हन का पति सोया हुआ था। पति जहाँ सोया हुआ था वहाँ एक खिड़की थी। उस खिड़की से एक काला भयंकर जहरीला नाग सेठ के पुत्र को डसने आया। भी वो आधा अंदर आया था कि बहुत तेज हवा के झोंके से खिड़की बंद हो गई, जिससे वह नाग कट गया। उसका एक टुकड़ा पति के पास पलंग पर गिरा और दूसरा पीछे झरोखे में सर्प के कटने का ठीक वही समय था जब दुखियारी महिला ने उस दुल्हन को तहे दिल से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। और दुल्हन के तेले तप व ब्रह्मचर्य का प्रभाव भी काम कर रहा था। दुखियारे पति पत्नी की सारी व्यवस्था कर दुल्हन ऊपर कमरे में आई। यहाँ पति के पास सर्प का टुकड़ा देखा। धर्म के रंग में रंगी वो घबराई नहीं और न ही अपने पति को जगाया, बल्कि नाग के दोनों टुकड़े उठाकर एक टोकरी में रख दिए। नवकार मंत्र सुनाया, फिर कपड़े से ढक कर कोने में रख दिया और स्वयं सो गई। नए पति पत्नी को तो कुछ पता नहीं था कि उनके विवाह की प्रथम रात्रि को क्या होने वाला है, अतः ये तो शांति से सो रहे थे। परंतु उनके माता पिता की आंखों में नींद न थी कि पता नहीं कब क्या हो जाए। सुबह के 3 बजने आए तो उन्होंने ज्योतिषी से कहा कि लगता है तुम्हारी भविष्यवाणी गलत होगी। ज्योतिषी कहने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वाणी गलत निकले, मैं कोई झूठ मूठ भविष्य बताकर पेट पालने वाला भिखारी नहीं हूँ। यदि आपके पुत्र का आयुष्य बलवान हो तो किसी प्रकार बच भी आए, पर घात तो अवश्य लगेगा। सुबह होते ही सेठ सेठानी पुत्र के बंगले में आए। माता पिता को आते देखकर विनयवत पुत्र व पुत्रवधु ने उनके सम्मुख आकर चरण स्पर्श किया। सेठ सेठानी ने पूछा, बेटा, रात शांति से व्यतीत हुई ना? पुत्र को तो रात की किसी बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने कहा, हाँ पिताजी। लेकिन पुत्रवधु ने कहा, आधी रात के समय एक युगल रोता हुआ इधर पहुंचा था, वे शायद नीचे ही होंगे, देखा तो नजर नहीं आए। पुत्रवधु ने कहा, माँ पिताजी, मुझे माफ करना, मैंने आपकी आज्ञा के बिना उस दुखियारी स्त्री को सहायता दी। पुत्रवधु की उत्तम भावना व उदारता देखकर सेठ सेठानी बहुत खुश हुए और बोले, तुमने बहुत पवित्र काम किया। हम तुम्हें धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं कि तुम सुखी रहो। फिर बहू ने नाग के दो टुकड़े दिखाए। यह देख सास ससुर चौंक गए। पूछा, इसे किसने मारा? बहू ने कहा, पिताजी मैं तो एक चींटी को भी नहीं मारती, पर हुआ ऐसा कि मैं खिड़की खुली छोड़कर नीचे उस स्त्री की सेवा में चली गई। वहां डेढ़ दो घंटे लग गए। जब ऊपर आई तो एक टुकड़ा इनके नजदीक पलंग पर तथा एक नीचे झरोखे में पड़ा था कि मुझे लगता है शायद नाग ऊपर चढ़ रहा होगा, तभी खिड़की हवा के वेग से बंद हो गई होगी जिससे नाग कट गया। ज्योतिषी ने कहा, देखा मेरी भविष्यवाणी सही निकली ना, यह नाग आपके पुत्र को डसने ही आया था, पर उससे पहले आपकी पुत्रवधु ने दीन दुखी से अंतर दिल का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जिसके प्रभाव से इसका सौभाग्य अखंड रहा है। वैसे घात तो यह भयंकर थी, आपके पुत्र के बचने की कोई संभावना नहीं थी। ऐसी गुणवान पुत्रवधु को पाकर सेठ सेठानी बहुत खुश हुए, अपनी पुत्रवधु को ढेरों आशीर्वाद दिए। सेठ ने ज्योतिषी का भी आभार मानते हुए उसे भी खूब इनाम देकर विदा किया। पुत्रवधु ने दान, शील, तप और भावना इन चारों बोल की शुद्ध आराधना की जिसके प्रताप से उसका पति भयंकर आघात से बच गया। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि धर्म ध्यान व शुभ करनी से अशुभ का असर भी खत्म हो जाता है। इसलिए हर श्रावक श्राविका को धर्म ध्यान करते हुए दान, शील, तप और भावना की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि दान देने से परिग्रह संज्ञा, शील पालने से मैथुन संज्ञा, तप करने से आहार संज्ञा व शुभ भावों से भय संज्ञा कम होती है। आप अपना भाग्य तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। बदली हुई आपकी आदतें आपका भाग्य जरूर बदल देगी। संत जन आपका भविष्य बताते नहीं, बनाते हैं। घूमने जाने पर एक्सीडेंट होने का योग था, उसकी जगह सत्संग में आ गए तो कांटा चुभ कर रहा गया। यह भविष्य संवारने का तरीका है। इसी तरह शकुन अपशकुन की बातें भी सामने आती है। जब अश्वग्रीव प्रति वासुदेव त्रिपृष्ठ वासुदेव से लड़ने गया था, तब उसे बहुत अपशकुन हुए। उनका छत्र टूटकर गिर गया, प्रजो वृष्टि होने लगी, उल्कापात होने लगा, दिन में तारे दिखने लगे, हाथी का चिंगाना और मत सूख जाना, ध्वजा मस्तूल पर कपोत बैठ जाना, गिद्ध का सिर पर मंडराना, कुत्ते का ऊपर मुंह करके रोना, खरगोश का बार बार प्रकट होना आदि ऐसे अपशकुन थे। मंत्री ने बहुत रोका भी, लेकिन प्रति वासुदेव नहीं माना तो त्रिपृष्ठ के हाथ से मारा गया। इसी तरह जब घर से बाहर निकले तो सामने पानी का घट भरे सौभाग्यवती स्त्री मिले, बाई तरफ पक्षी चुग्गा लेते मिले, गाय बछड़े को दूध पिलाती मिले, गधा बाई ओर और सर्प दाएं और मिले, हिरण बाएं से दाएं जाता हुआ मिले, तो समझो शकुन अच्छे हो रहे हैं। ऐसी कई शकुन अपशकुन की बातें प्रचलित है, लेकिन अगर आप चार शरण लेकर कहीं जाएं तो हमारा बचाव हो सकता है। भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र में फरमाया है, जरा मरण वेगेन बुझमानान पाणिन धम्मो रिवो पैठाए गई शरण मुत्मम। बुढ़ापा, रोग, मृत्यु यह सबसे बड़े दुख के कारण है। इसके अंतर्गत अन्य सारी समस्याएं आ जाती हैं। इन्हें दूर करने के लिए भगवान ने धर्म का आचरण ही आवश्यक बतलाया है। धर्म ही द्वीप है, धर्म ही प्रतिष्ठा है, धर्म ही उत्तम गति है, धर्म ही श्रेष्ठ शरण है। धर्म की शरण व्यक्ति को सभी संकटों से बचा सकती है। अंत में आचार्य श्री ने यह भी कहा कि ज्यादा खुशी ज्यादा गम में जिंदगी का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिए, अन्यथा वो गलत हो सकता है। आज की तपस्या में ज्योति जी मकसूदा के 21, धर्मवीर अनु जी दोनों के 5-5, तेला संजीव अग्रवाल बेला, राजेश जैन उपवास, आस्था जैन, आयंबल चंदा जैन, एकासना पुनीत जैन। इसके अतिरिक्त भी तपस्या निरंतर गतिमान है। आज उपस्थिति भी कमाल की रही। ऊपर नीचे सीढ़ियां सब खचाखच भरी थी। आचार्य प्रवर ने 1.5 घंटे तक प्रवचन सुनाया। जनता पूरे मन से एकाग्र होकर सुनती रही। जबकि जंतर मंतर भूत प्रेत विषय पर तो प्रवचन हो ही नहीं पाया। समय जो पूरा हो चुका था। आगामी रविवार का विषय रखा गया 4 बोल। बड़े अनमोल अवश्य अवश्य सुने।